करेंगे।
आइए भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंद गोप कुमाराय।
नंद गोप कुमाराय।
गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभो नित्यानंद।
प्रभो नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है ज्ञानी परिवार के निवास स्थान के ऊपर दूसरे दिन हरी कथा में। ललित और युगल दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार के साथ, कारण तो विवाह के 15 साल पूरे हुए थे, उपलक्ष्य तो ये था, लेकिन भगवान की कथा उसका मूल उद्देश्य था। कोई भी कारण निकल आए लेकिन भगवान की कथा हो तो वो मंगल का कार्य माना जाता है। तो अभी कथा सुननी कैसे चाहिए इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। एक मेला कहीं लगा हुआ था, तो बाहर एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था। मूर्तियां चार थी उसके पास, चार एक जैसी देखने में, रंग रूप शक्ल सबकी एक जैसी थी, लेकिन खरीदार जब पूछे मूर्ति कितने की है तो पहली के ऊपर हाथ रख के बोले ये मुफ्त की है। बोला दूसरी, बोला ये तो 1 रुपये की है। बोला तीसरी, बोला 10 रुपये की। चौथी, बोला 100 रुपये की। तो बोला मुफ्त वाली ना सब एक जैसी है। बोला लेने चार पड़ेगी। चार तो 111 रुपये देने पड़ेंगे, एक मुफ्त की 100 रुपये की, इसका क्या मतलब? सब कोई ले नहीं। एक आदमी बुद्धिमान आया, उसने बोला आखिर ये इसका दाम ऐसे क्यों रखा है? बोला तो फिर समझाओ, मैं तो सब लेता हूँ, 111 रुपये ले लो, चार मूर्तियां मैंने ले ली, अब मुझे बताओ इसमें शिक्षा क्या आप है, सभी तो एक जैसी दिखने में आ रही है। बोला आपको देखना है इसकी शिक्षा बताऊं आपको। पहली मूर्ति मुफ्त वाली को उठाई, उठा के एक तार लेके उसके कान में डाली, नहीं गई। दूसरे में डाली, नहीं गई। बोला ये मुफ्त वाली मूर्ति है, ये वो सुनने वाला है जो कान के अंदर कुछ भी नहीं जाने देता, धनु कान बंद बैठा होता है मूर्ति की तरह। बोला ये मुफ्त की मूर्ति है। बोला 1 रुपये वाली, दूसरी को उठाया, इधर से तार डाला, दूसरी तरफ से बाहर निकला। बोला 1 रुपये वाली है। यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है, जब अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। काका था एक, 15 साल से सत्संग में जा रहा था, बच्चा हुआ वो भी 14 साल का हो गया। काका दुकान के ऊपर बैठा था, काका सत्संग में गया था, बच्चा दुकान पे बैठा था, कोई ग्राहक आया, ग्राहक ने किसी चीज का दाम पूछा, बच्चा भागता हुआ पिता के पास गया, सत्संग में चीज मांग रहा है उसका, तब तक संत ने कह दिया गाय भगवान श्री गोपाल को बहुत प्रिय है, उसको तो प्रेम से खिलाना चाहिए और खाती हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। इतना ही सुना, तब तक तो बेटे को बाप ने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूं। बेटा दुकान पे गया, बाहर बोरी रखी हुई थी चावल की, गेहूं की, एक गाय आई, एक बैल आई, दोनों खाने लगे। ऐसे बच्चा हाथ खंजोड़ के, हे मैया आपने बड़ी कृपा की। तब तक बाप वहां से कथा से उठा आया और आते ही जैसे गाय को दुकान में खाते देखा, दो तो लाठी मारी गैया को और दो थापड़ मारे बेटे को। बोला ये क्या है, दुकान ऐसे चलेगा? बोला अभी तो महाराज ने कथा में बताया था गैया को खिलाना चाहिए। बोला 15 साल से सुन रहा हूँ ये तो उधर ढूंढ के उधर छोड़ गया था, इधर थोड़ी घर में लाने की। तो ऐसे बहुत कथा सुनने वाले रोज कथा में जाते हैं, लेकिन कथा की बात कथा में छोड़ के घर में लाने को तैयार नहीं है। और रुपये रो एक रुपये वाली मूर्ति है तो वैसी देखने में ऐसे की ऐसी, लेकिन एक रुपये वाली है। बोलो 10 रुपये वाली तार कान में डाली, दूसरे कान से नहीं निकली, मुंह से बाहर निकल आई। बोला ये 10 रुपये वाली है, न कोई शास्त्र है, न कोई साधु है, न कोई गुरु है, कहीं ने कथा सुनते फिर कथा शुरू करना शुरू कर देते हैं। न कोई उसका जैसे को के डॉक्टर के पास कंपाउंडर बैठ के थोड़ा दिन सीखा नहीं सीखा, जाके अपना अस्पताल है, पहला आदमी मरे तो मरे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये नए हकीम होते हैं, कथा सुन के कथा करते हैं, लेकिन किसी स्कूल में जाके किसी परंपरा किसी शास्त्र किसी साधु का शरण लेके कथा करने के लिए तैयार नहीं। इधर से सुना इधर से बोला कथा पूरी हो गई। बोले 100 रुपये वाली मूर्ति का क्या विशेषता है? तब तार डाली कान से, मुंह से निकली, कान से निकली, दिल में चली गई। बोले ये 100 रुपये वाली मूर्ति है, ये वो सुनने वाला है, एक बार कान से जो अंदर चला गया वो उसे हृदय के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया और उसका जीवन बदल जाता है। तो श्रोता वो है जो सुनने के बाद हृदय में उस चीज को ले और हृदय में परिवर्तन आए और जीवन में दिखने में आए कि इसके जीवन में परिवर्तन आया है। भाई सत्संग को सुधरियो भलो, सत्संग में जाए तो सुधर के आना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सत्संग के अंदर सुनने की। वैसे भागवत में सुनने वालों के 4 ऊंच कोटि के सुनने वाले और 4 निम्न कोटि के सुनने वाले तो भागवत के महात्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आज चर्चा न करके अपन चर्चा वो करेंगे जो अभी चल रही है विवाह गांठ में, कि उपलक्ष्य में कथा हो रहा है, शादी का सालग्रह है। तो शादी या विवाह ये हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार है। और प्रथम विवाह इस धरती के ऊपर ब्रह्मा जी के अपने सीधे हाथ से पुरुष की उत्पत्ति हुई स्वयंभू मनु की, उल्टे हाथ की तरफ से शतरूपा की उस उपस्थिति हुई, उत्पन्न हुई, उन दोनों को मनु, एक मनु स्वयंभू और शत्रुपा दोनों को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा अब आप विवाहित जीवन से संसार में बालकों को जन्म दीजिए, प्रजा की उत्पत्ति कीजिए। तो ये प्रजा की उत्पत्ति का निर्देश ब्रह्मा ने दिया है। पहले ब्रह्मा ने 4 पुत्र पैदा किए और चारों ने कहा हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, साधु बनेंगे, और चारों साधु बन गए, 4 कुमार उनके नाम है सनकादि कुमार। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा ये, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उस क्रोध से आंखों के बीच में से रुद्र नीचे गिरा, उसका नाम रुद्र हो गया। तो बात हम ये कर रहे थे कि पहला विवाह इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग से उत्पन्न किए हुए मनु और शत्रुपा कराया और उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल फैमिली प्लानिंग का कोई उनको संदेश उपदेश नहीं दिया, बोले 3 पुत्रियां बहुत अच्छा, 2 बेटे वेरी गुड, यहाँ तो बेटी एक ज्यादा होती है तो हाथ में ऐसी थोड़ा बीटिंग तेज चलती है, पता नहीं क्या हो गया, आपत्ति आ गई कोई। अरे बेटी नहीं होती तो तुम कहां से आते, इस दुनिया में तुम कहां से आए? अरे मां नहीं होती तो तुम्हारा जन्म कहां से हो गया? और उनमें से एक बेटी को पिताजी विवाह कराने के लिए लड़का ढूंढने गए तो लड़का भी पहले लड़की के लिए बड़े बुजुर्ग ढूंढा करते थे। पिता स्वयंभू मनु स्वयं अपनी बेटी देवहूति के लिए लड़का ढूंढने के लिए गए और करदम मुनि को अपना जामाता उसने स्वीकार किया, वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र ही है, छाया से उत्पन्न हुआ है। और देवहूति को 9 कन्याएं हुई और एक ही बेटा हुआ, 9 बेटियां हुई, बहुत बड़ा खुश थी देवहूति, मेरी 9 बेटियां, कोई चिंता नहीं थी उसको। ये सृष्टि का क्रम बता रहा हूं कि विवाह से संतान उत्पत्ति में, पता है कहां ब्रह्मा जी ने मना की बच्चे मत पैदा करो, पता है कहां बताया? जो रुद्र उत्पन्न हुआ ना क्रोध से नीचे गिरा, उसको कहा तुम्हारी 11 रुद्रयाणी हैं, तुम कुछ प्रजा करो। उसने प्रजा ऐसी की भूत प्रेत, और जो ब्रह्मा जी के ऊपर आके उसको नोचने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा हे बाबा तेरी ये संतान बंद करो, नहीं चाहिए तुम्हारी ये संतान। तब पहली बार ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी मेरे को प्रजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूत प्रेत पैदा करके संसार में दुख क्यों करते हो? तब से हमको समझ में आता है कि आजकल लोग कहते हैं बच्चे कम पैदा करो क्योंकि भूत प्रेत पैदा कर रहे हैं। अच्छे बच्चे पैदा करने तो 15 करो, कौन मना कर रहा है? अरे अच्छे हो तो 10 हो तो क्या खराब परेशानी होती, लेकिन भूत प्रेत एक ही अच्छा नहीं है। ये सब जितने ज्यादा आतंकवादी हो रहे सब भूत प्रेत है, भूत प्रेत सिंह थोड़ी भूतों को हुआ करते थे, जो बेगुनाह आदमियों को रस्ते में जाते हुए मारते थे उसी को असुर बोलते, वही संकट का कारण होते हैं संसार के अंदर। तो कब से बंद करना बच्चा बंद कर, ज्यादा से ज्यादा भगवान ने आपको दिया है तो आपका संतान आपसे नहीं पला जाता, हमको देना भैया, हमको साधु बनाने के लिए बहुत उनकी जरूरत है, लेकिन अच्छे बच्चे तो संसार में होने चाहिए ना। पहले पुराने आप थोड़ी 3 पीढ़ियां पीछे जाओ, आपके कितने परिवार था बड़ा, कभी पता करके देख लो। हमको आज भी मिलते हैं कि हमको कौन 9 भाई, पूरे 9 भाई हैं, कहां हम गए थे, कहां से 9 भाई मिले थे हमको याद नहीं है। 9 भाइयों के बंगले बने हुए साथ में, एक फोटो दिखाया 49 फोटो थे, मैंने कहा ये आपके कॉलेज का? बोला कॉलेज का नहीं, हमारे परिवार का है। 49 पूरे है, और सब एक ही रसोई में पका के खाते हैं, घर बनाए हैं अलग अलग भोजन ही, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? बोला ऐसे है। तो हमने बोला उनकी माता जिंदा थी, माँ ये तुम्हारा परिवार साथ कैसे चल रहा है? घर में मुझे ले गई, मंदिर दिखाया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर था घर के अंदर। बोला ये हमारे ठाकुर जी, हमारे घर में भोजन बनता है, भगवान को भोग लगता है और सारे परिवार खाते हैं, कोई चिंता नहीं। अरे हाँ, जहाँ भगवान होगा वहां सब साथ चल सकते हैं, भगवान नहीं हो तो 2 भी साथ नहीं चल सकते, 2 में भी झगड़ा होना ही होना है। तो विवाह की परंपरा ब्रह्मा जी ने शुरू की है और ये विवाह संस्कार हमारे शास्त्रों में है। लेकिन विवाह काहे के लिए किया जाता? कल एक सज्जन यहाँ था, उसने कहा था भारतीय विवाह आजीवन चलता है, इसके ऊपर विश्व के अंदर लोग दुनिया के अंदर रिसर्च कर रहे। तो हमारा विवाह भारत संस्कृति का विवाह भोग प्रदान नहीं है, ये पहला एक लाइन याद करो, भारत संस्कृति का विवाह भोग प्रदान नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है। प्रोजेनी अपना कुल परंपराओं की रक्षा के लिए है। भारत संस्कृति के विवाह का पहला लक्ष्य कुल परंपराओं की रक्षा, पुत्र होगा कुल परंपराएं चलेंगी, इस जन्म तक नहीं, पुत्र होगा तो पिंड दान करेगा, पितृ का उद्धार करेगा। तो ये विवाह हमारा एक जन्म के लिए या एक महीने दिन साल के लिए नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का विवाह भोग प्रदान है, वो विवाह भोग प्रदान है। अगर भोग नहीं मिला तो विवाह टूट जाएगा। भारत की संस्कृति के विवाह में तलाक शब्द है ही नहीं, तलाक शब्द हमारे किसी शास्त्र में है ही नहीं। संन्यास लेके चला जाएगा तो दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन पहले अपनी स्त्री की सुरक्षा का प्रबंध करके फिर जाएगा, बड़े बड़े बेटे के संरक्षण में छोड़ के। लेकिन दूसरे विवाह के लिए पत्नी को छोड़ेगा नहीं। जब से ये तलाक कहां से आया, भोग प्रदान जब विवाह हो गया तो तलाक आया। प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण दे रहे थे, भारत के अंदर एक भिखारी बेचारा लूला लंगड़ा था लेकिन कपड़े रोज धुले हुए पहनता था। प्रभुपाद ने कहा इतने धुले हुए कपड़े इस भिखारी को कौन पहनाता है। बोला देश के खड़े होकर देखा तो उसकी पत्नी रोज कपड़े धोके लाती है, उसको ठीक तरह से पहनाती है, भोजन कराती है और फिर चली जाती है। बोला इतने बेचारे अपंग या विकलांग की पत्नी भी उसको छोड़ नहीं रही है, उसकी देखभाल कर रही है, उसके भाग्य में ये मिला है तो उसने इसको स्वीकार किया है। और फिर कहते हैं प्रभुपाद दूसरी तरफ मैंने देखा उस वक्त में अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी पत्नी के साथ भारत में आया था, दोनों का वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ था, लेकिन 2-3 साल के बाद उस पत्नी को तलाक दे दिया प्रेसिडेंट अमेरिका के ने। और जब दोबारा यहां घूमने आई तो सड़कों के ऊपर हिप्पियों की तरह घूम रही थी, किसी ने राम राम भी नहीं किया था। तो भारत के भिखारी की पत्नी और भारत के भिखारी का विवाह अमेरिका के प्रेसिडेंट के विवाह से बहुत बड़ा है और बहुत महान है। ये उदाहरण देकर समझाया कि यहां के गरीब का विवाह भी उसके प्रेसिडेंट के विवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके विवाह का उद्देश्य इस देश इस लोक का नहीं है, भोग का नहीं है। और हंसी की बात तो मुझे आती है कि एक पाश्चात्य देश में घूमते हुए भारत के संत ने किसी स्त्री को कब्रिस्तान में ताजी कब्र के ऊपर ऐसे पंखा झेलते हुए देखा तो संत ने कहा इतनी तो परवीरता कोई भारत में है ही नहीं, ठीक है घर से बाहर नहीं निकलती है साल तक के लिए अपना आजीवन, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर पति की कब्र के ऊपर पंखा झेली, हे माँ तुम्हारे को प्रणाम है, तुम तो बहुत बड़ी महान हो सती हो। उसने बोला ये बात नहीं है महाराज, अभी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है कि क्यों पंखा झेल रही हो आखिर। तब बोलती है महाराज हमारे यहाँ रवाज है जब तक कब्र नहीं सूखती है तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते, इसलिए पंखा से जल्दी से इसको सुखाने का प्रयास कर रही हो कि जल्दी सूख जाए नहीं तो 3-4 दिन लग जाएंगे। तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति का बड़े से बड़ा परिणाम क्या निकला है, आजकल पाश्चात्य देश के नौजवान बच्चों को ये पता नहीं मेरा बाप कौन है मेरी माँ कौन है। साइकोलॉजिकली डीअरेंज मानसिक तौर से मानसिक रूप से वो बहुत बड़े दुर्घटना जैसे उनसे हो गई। माँ के बगैर बच्चा कैसे कौन पालेगा, माँ के बगैर बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। वहां तो मेरे को याद आती है एक आदमी ने एप्लीकेशन दी कि मेरे को छुट्टी दे मेरे पिताजी मर गए। भाई छुट्टी हो गई 3 महीने के बाद आया मेरे को छुट्टी दीजिए मेरी माताजी का देहांत हो गया। भाई ठीक है 1 महीने के बाद आया मेरे पिताजी का देहांत हो गया छुट्टी दे, ये क्या बात है। चलो उसने सोचा कोई ठीक है जो है 3 महीने के बाद मेरी माताजी का ध्यान। उसने बोला तेरे माता पिता हैं कितने, बार बार छुट्टी दे रहा। बोला पहले पिताजी मर गया माताजी ने दूसरी शादी कर ली, फिर माताजी मर गई पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, अब पिताजी मर गए माताजी ने दूसरी शादी कर ली। अरे तो बोला नौकरी जोड़ बात तुम्हारे यहाँ शादियों का ही धंधा है और कोई धंधा है, तो ये विवाह किस काम के। तपस्या विवाह बहुत बड़ा तपस्या है, तो यज्ञ किया जाता है भगवान की उपस्थिति में दो जीवों को कि इस संसार के अंदर ऐसी जीव आत्माएं जो प्रतीक्षा कर रही हैं उनको इस दुनिया में आना है, उसको कोई माता पिता चाहिए। इसका मतलब किसी के कर्मों के अनुसार इस दुनिया में जो आना चाहिए उसके लिए माता पिता को चुना जाता है। तो ये एक कोई साधारण काम नहीं है, किसी आदमी के उद्धार का बहुत बड़ा काम है। तो ये विवाह भारत संस्कृति का एक जन्म का भी नहीं है। अभी तक हम पितरों को पिंड दान करते हैं श्राद्ध करते हैं घरों में, अब तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा विश्वास आत्मा के अमर होने के ऊपर है, तब तो जो शरीर छोड़ के गया उसके पीछे भी तो श्राद्ध क्यों करते हैं, तो आत्मा के अस्तित्व के ऊपर हमको विश्वास है ना। ये हमारा पितर है इसको हम पिंड दान देंगे तो ये उधर जाएगा इसका उद्धार हो जाएगा। तो हमारा विवाह कोई साधारण संसार में भोग की वृत्ति से नहीं है, इसलिए भारत के विवाह की विशेषता ये है। संस्कार का मतलब पवित्र करना, रिश्ते को पवित्र करना, ये रिश्ता अटूट है। अरे पहले जमाने में भारत की माँ अपनी बेटी को शिक्षा क्या देती थी, बेटी तेरी डोली यहां से उठ रही है अब तेरी अर्थी तुम्हारे ससुराल से उठनी चाहिए, ये माँ शिक्षा देती थी अपनी बेटी को, ये शिक्षाएं माताएं दिया करती थी। तो वो ये हमारा विवाह यज्ञ है, उसमें यज्ञ होता है। और भगवत गीता लिखती है दान तप यज्ञ कर्म न त्यजेत, ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, इनको निश्चित रूप से करने चाहिए। और प्रभुपाद जी ने उस भगवत गीता के यथारूप के अंदर यज्ञ कर्म को लिखा है विवाह यज्ञ। और ये विवाह यज्ञ अति महत्वपूर्ण इस संसार के अंदर हमारे संस्कारों में सबसे मुख्य संस्कार विवाह संस्कार है। स्त्री का अर्थ क्या होता है, जो विस्तार करती है, दो कुलों को जोड़ती है, दो खानदानों को जोड़ती है, दो राज्यों को जोड़ती है। अगर पुराने जमाने के विवाह देखोगे तो कुंती का विवाह अगर होता है वसुदेव के साथ तो पांडवों का और यादवों का आपस में मिलन हो गया, दो बहुत बड़े राज्य आपस में संगठित हुए केवल विवाह एक के संबंध से। तो ये विवाह स्त्री जो होती है उसका अर्थ होता है विस्तार करने वाली, जो अपने से विस्तार करती है और दो कुलों को जोड़ती है, दो कुलों को नहीं दो देशों को जोड़ती है। बहुत बड़ा महत्व है इस हमारे विवाह का। तो विवाह का जो सालग्रह मनाते हैं उससे भी हमको प्रेरणा ये लेना चाहिए कि आजीवन हमारा ये कोई संसारी कांटेक्ट नहीं है, ये हमारा धर्म का संकल्प है। क्या पंडित जी कहता है जब विवाह कराते हैं कि हम हर धर्म के काम में साथ रहेंगे, हम हर धर्म के काम में हर में साथ रहेंगे एक दूसरे का, मैं आपका पालन पोषण करूंगा, आप मेरे धर्म में मेरा सहयोग करेंगी। और भगवान ने इस दुनिया में जब अवतार लिया तो विशेष रूप से ये विवाह संस्कार के अंतर्गत से जरूर गुजरे हमको सिखाने के लिए। भगवान रामचंद्र का विवाह का तो सबको ज्ञात है कि कितना भव्य विवाह, वो उस विवाह के अंदर भी जो शिक्षाएं हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये विवाह भगवान जब अवतार लेते हैं तब भी विवाह का संस्कार निभाते हैं, क्योंकि ये शिक्षा देनी है संसार को। तो हमारे विवाह का महत्व हमको समझना चाहिए, माता का क्या दायित्व है ये समझना चाहिए, पिता का क्या दायित्व है ये समझना चाहिए। और ये विवाह आजकल के हिसाब से कह रहे हैं, पहले जमाने में जितना बड़ा खानदान होता था उतना महान माना जाता था, जितने बड़े बुजुर्ग घर में होते थे तो बड़े से बड़ा संपत्ति मानी जाती थी कि हमारे बुजुर्ग घर में बड़े हैं। इसके ऊपर भी आघात पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा किया है कि हम साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, मैं और मेरी बीवी बस हमने इतना कर दिया, हम दो हमारे दो बाकी सब जहन्नम में जाओ। ये हमने ऐसा एक गलत किसी ने हमारे दिमाग में प्रेरणा दे दी है। इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण हो ये रहा है कि हमारे बच्चे नियंत्रण में नहीं आ सकते, अनुशासन में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पहले बाप से बच्चा डरता था लेकिन दादी की गोद में जाकर चुपता था और दादी उसका संरक्षण करती थी। अब बाप से डर तो रहता था लेकिन दादी के गोद में उसको भय नहीं होता था। अब बाप ही डराता है डांटता है, अब दादी तो है नहीं, थोड़ी देर के बाद बाप का गुस्सा खत्म हो गया, फिर कहा बेटा नहीं कोई बात नहीं, तीन बार ऐसे करे, चौथी बार बेटा कहेगा रोज डांटता रोज चुप करता, ऐसी बात सुनने की जरूरत क्या है? ये तो मानसिकता, ये साइकोलॉजी है। हम अभी आज भी कहते हैं, हमने इसके ऊपर बहुत विचार करके देखा कि 2 साल के बच्चे को स्कूल नर्सरी में क्यों भेजा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है घर में दादा दादी का न होना, क्योंकि घर में देखे कौन बच्चों को? पहले तो बच्चे के 8 घंटे दादा दादी संभालते थे उसको, अब वो नहीं है तो बच्चे को स्कूल में जाके फेंक कर, दादी की गोद में जो बच्चा बैठा होता था दादी उसको रामकृष्ण की कथाएं बताती थी, रामायण भागवत बताती थी, अपनी पीढ़ी के 7 पीढ़ियों के नाम बताती, तेरे पिता का नाम गोपाल, गोपाल का गोविंद, गोविंद का मुकुंद, मुकुंद का दामोदर, 7 पीढ़ियां बताती थी। आज जो नर्सरी में बच्चा जाता है वो वहां से वापस आके कोई एक संस्कार सीख के आता है क्या? कोई एक संस्कार सीख के आता है क्या? अपने बाप का नाम उसको लो तब भी ले कैसे लेगा वो भी आप पूछ के देखना पिताजी। कोई मुश्किल से बच्चा श्रीमान गोपीनाथ जी ऐसा कहने वाला बहुत कम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोले मां पिताजी का नाम जीके। क्या होता है जीके? टीबी, टीबी है वो, पिता का नाम टीबी है और क्या एक नाम बड़ा कल था बीपी ब्लड प्रेशर है मेरा बाप मेरे लिए वल्लभ प्रसाद है या वैकुंठ प्रसाद है, वैकुंठ नाथ का प्रसाद बीपी उसका नाम है मानो, तो बीपी मेरा बाप बीपी है, तेरे बाप बीपी है, तेरे लिए ही बीपी है, तेरे घर के लिए भी बीपी है, एक मेरा बाप का नाम टीबी है तो तेरे घर को ही टीबी लगी है आके। क्या बाप का नाम, दादा का नाम तो मेरे ख्याल में आजकल के शहर के बच्चों को 100 में से पूछो तो 90 को दादा का नाम भी नहीं आएगा, तो कहां से परंपराएं चलेंगी। तो ये शिक्षाएं कहां चली गई, हमारे विवाह के ऊपर आघात पाश्चात्य संस्कृति ने भोग बनाया हमारे विवाह को, जो हमारा विवाह योग के लिए हुआ करता था, असल में योग के लिए होता हुआ करता था कि साथ मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे। अब सहयोग में हमारे को सुबह भगवान की भक्ति के लिए आप भोजन बना के दोगी, मैं भोग लगाऊंगा, आप आरती की प्लेट धो के आओगी, मैं आरती करूंगा, मैं फूल लाऊंगा, आप माला बना के दोगी, मैं फल लाऊंगा, आप काट के दोगी, और दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे और बच्चों का पालन पोषण करेंगे। ये विवाह का हमारा उद्देश्य हुआ करता था। अब पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे को भोग प्रधान विवाह ऐसा बना दिया है और बच्चों की हमारी शिक्षा भी उसी पद्धति के अनुसार चल रही है, संस्कारहीन बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। तो विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां ये भजन में जब आया कि भगवान श्री कृष्ण भी संसार के अंदर अपने साथ अपनी शक्ति को लाते हैं और विवाह करते हैं, तो विवाह भी उनके अद्भुत विवाह अपनी जगह पे हैं और उनका कुल है, परंपरा है, सबका वर्णन भागवत के अंदर आया है। और वहां भगवान श्री कृष्ण की कुल परंपराओं को कभी सुनेंगे तो हमको तो गौरव होना चाहिए। भगवान ने यह सिखाया है कि एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति भगवान ने की है, इसका भागवत में वर्णन है, और कोई परेशानी नहीं उनको पालन पोषण करने की, परेशानी नहीं। जो जीव संसार में आता है अपने कर्म साथ लाता है, अपना भोग साथ लाता है, जो आता है अपना भोग साथ लाता है, उसको जो मिलना है वो मिलेगा, आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। हमको किसने अधिकार दे दिया कि हम इतना घिनावना काम करके कि आने वाले जीव को इस दुनिया में आना ही नहीं देते। ये महापाप इस वक्त पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, वो सबसे पाप ये है कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे को मार दिया जाता है। विवाहों का विवाह का धज्जियां उड़ाई जा रही कि मर्यादा सारी खत्म होती जा रही। सबसे बड़ा पाप दुनिया के अंदर इस वक्त दो गौ हत्या है, एक सब और दूसरी ये द्रोण, क्या कहते हैं इसको, भ्रूण हत्या, ये सबसे बड़े दुनिया के दो पाप इस धरती के ऊपर हो रहे हैं। और इसका परिणाम क्या है, बड़े युद्धों से गुजरना पड़ रहा है, आतंकवाद को मुंह देना पड़ रहा है, सुनामी के अंदर लोगों को मरते हैं, अकाल के अंदर भूखे लोग मर रहे हैं, भूकंप के अंदर सब लोग, दुनिया के अंदर जितना भी आपत हो रही है उसके कारण केवल ये दो है। ये सामूहिक पाप है, इसका परिणाम सामूहिक भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति का पाप होता है उसको व्यक्ति को भोगना पड़ता है, एक राज का पाप होता है पूरे राज को भोगना पड़ता है। तो ये विवाह हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। और फिर बालों के लिए यहां भगवान ने कितनी सुंदर लिए बाब लिखी है, बाल लीला लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनो चरायो। छोटी उम्र में भगवान श्री कृष्ण के 3 साल की आयु तक विशेष रूप से माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन है श्रीमद भागवत। माखन चोरी का भगवान का वर्णन है, इससे आप कभी ये मत समझना कि भगवान माखन के चोर हैं। आपके घर कभी माखन चुराने आए माता जी लोग, आपके घर कभी आया क्या गोपाल माखन चुराने, आया हाँ नहीं आया ना, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको कहने का माखन चोर, आपके घर आए तब कहना ना, कौन उसको माखन चोर कहने का अधिकार रख सकती है। जो गोपी प्रेम से माखन बनाती है और बुलाने जाती है कि कन्हैया हमारे घर माखन तैयार है खाने आना, और कन्हैया प्रेम से जब खाने आता है तो फिर कहती है तुम माखन चोर हो, तब उसको मजा आता है। लूट लूट दधी माखन खायो लिखा है, लूट लूट के खाया, चुरा के खाया, ऐसे क्यों लिखा है, बोला इसमें उनको बड़ा आनंद आता था, बुलाने वाले को प्रेम बड़ा सुख मिलता था उसको। तो गोपियां जाकर यशोदा को कहती थी, हे मैया तेरा लाला रोज हमारे घर में आता है, मटकी फोड़ता है, दूध दही गिरा देता है, मक्खन बंदर को खिला देता है। मैया बोलती है, क्यों हमारे घर में दूध की कमी है, 9 लाख गायें हैं इनके पिता की, यहां तो दूध दही की नदियां बहती है, तो तुम्हारे घर क्यों आता है। अगर आता भी है तो इतना छोटा 3 साल का बच्चा है, कितना खाएगा, दे दिया करो इतना माखन। एक गोपी कहती कन्हैया बहुत सुंदर माखन बनाया, खाओगे? ले लो खाओ। बोला क्यों, भीख मंगाओगे? तेरे घर का खाऊंगा, मेरे बाप के घर में माखन नहीं है क्या? बोला फिर? बोला खाऊंगा लेकिन लूट के खाऊंगा, चोरी करके खाऊंगा, उसमें मुझे मजा आता है, कुछ परिश्रम करके खाऊंगा, मुफ्त का थोड़ी खाऊंगा। मेहनत करके खानी है मुझे। तो यशोदा ने एक दिन कह दिया गोपियों को कि तुम खाओ, तुम्हारे घर कभी जाई मक्खन चुराने आए तो तुम पकड़ के ले आना मेरे घर में। गोपियों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया कि इस बार तो कन्हैया को पकड़ के ले जाना है। पकड़ने के लिए क्या कर दिया, दरवाजे के ऊपर घंटियां बांध दी, खिड़की में घंटियां बांध दी, कन्हैया आएगा, कूदेगा, घंटी बजेगी, हम जाके पकड़ लेंगे। पहले तो गई पनघट के ऊपर, हे कन्हैया लाला बहुत सुंदर माखन आज मेरी सास ने बनाया है, हमारे घर में आया, चकाचक खा के जाना। वहां से सास को कहती है, कन्हैया को दावत दे के आई हूं, निमंत्रण दे दिया, आएगा, बस पकड़ने के लिए प्रयास करना। अभी दोनों तरफ से तैयारी हो गई। कन्हैया ने बुलाया, आया मधुमंगल, चलो महाराज मक्खन खाने चलना है, गोपी बुला के गई है अपने को, इस तो कृष्ण चलो चलेंगे, श्रीधामा कहाँ है, चलो चलो साहेब, 5, 8, 7, 6, 7 हो गए। दरवाजे के ऊपर घंटी लगी हुई है, अरे मैया गोपियां बड़ी होशियार हो गई है, भैया हमको पकड़ने के लिए घंटी बांधती है, खिड़की से कूदेंगे, खिड़की के, अरे इधर भी बड़े घंट लगा दिए। गोपियों को बुद्धि कहां से आ गई, ये तो ग्वालनी है, गोबर लेपती है, इसको घंटियां बांधने कहां से आ गई। भगवान को अपना ऐश्वर्य याद आ गया, ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य नहीं है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण केवल ब्रज में है, मथुरा आते आते 14 कला हो जाता है और द्वारका जाते 12 कला बचती है। वहां ऐश्वर्य प्रधान है, वहां माधुर्य प्रधान है, लेकिन आज ऐश्वर्य आया, कहते घंटी कोई नहीं बजनी चाहिए, मेरा आदेश है। भगवान के आदेश थे, सूर्य चांद अपने साथ समय पे उगते हैं, तो घंटी को क्या ताकत है बजे, सब कूद के अंदर गए, कोई घंटी नहीं बजी, उठाया उखल उठाया, घंटी बंधी हुई थी नहीं बजी, चला कन्हैया ऊपर छीके में, घंटी थी नहीं बजी, माखन उतारा, खाओ श्रीधामा, तुम खाओ मधुमंगल, बंदर को दो, बंदर भी ऐसे किया, कन्हैया बोला माखन इसका खट्टा है क्या, हमको बुलाया है, कल का तो नहीं है, ऐसे कन्हैया ने उठा के मुंगली मुंह में डाली, सब घंटियां बजी। अब सब जो घंटियां बजी, कन्हैया बोला चलो तुमको बोला नहीं बजना, बोला आपकी किसकी बात माने, आपने शास्त्र में लिखा है गोपाल को भोग लगे तो घंटी बजे, गोपाल को भोग लगेगी तो घंटी बजेगी, आपने शास्त्र में लिखा है तो आपकी बात माने कि शास्त्र की बात माने। तो शास्त्र की बात का प्रमाण तो बहुत बड़ा है, भगवान चुप कर गए, तब तक गोपियां आ गई अंदर, गोपियां आ गई तो ग्वाल बाल भाग गए, गोपियों ने कन्हैया को बांध दिया, पकड़ लिया गोपी ने कन्हैया, कन्हैया को पकड़ गए और खंभे के अंदर बांधा, बांध के खंभे से दूसरी गोपी को बांध दिया है, बांध दिया है, चलो चलो उसको पकड़ के चलती है। जब 4-5 और गोपियां वापस आई तो कन्हैया खुला हुआ खड़ा ऐसे, गोपी बोलती है तुमको अभी बांध के गई थी, तुम कैसे खुल गया? बोला तेरे को बांधना नहीं आता है, कैसे बांधते? बोला खड़ी हो जा, तुम्हें बांध के दिखाता हूं। गोपी को खड़ी करके अच्छी तरह से बांधा और फिर भागता हुआ चला गया, बोला कल आएंगे। गोपी ने बोले तो कमाल है कन्हैया। अब गोपी को बड़ा मजा भी आ रहा है, सुख भी मिल रहा है, भगवान मिल गया, दूसरों को बुलाने के लिए चली गई तो फिर अब खुद बन गई। फिर एक बार कन्हैया ऐसे का माखन चुराने के लिए घर में आया, बाहर से गोपी ने दरवाजा बंद किया, जो कड़ी बंद किए आवाज हुआ, अरे गोपी ने दरवाजा बंद किया, कहां से निकलेंगे? खिड़की से कूदो, 1, 2, 3, वो मधुमंगल ब्राह्मण मोटा सा थोड़ा लंगड़ा है, फंस गया उसमें, अब निकल नहीं पाए, बाकी भाग गए। गोपी ने मधुमंगल को पकड़ के नीचे उतारा, बोला अब कन्हैया को बुलाने का बहुत अच्छा, हमारे को एक क्या बोलते हैं होस्टेज मिल गया है, क्या कहते हैं इसको जो उठा के जाते हैं आदमी को, अब क्या किया, एक पेड़ के ऊपर रस्सी डाली, रस्सी मधुमंगल की चुटिया में बांधी और दूसरी तरफ से रस्सी को ऐसे खींचती है, ऐसे रस्सी खींचे चुटिया ऊपर, वो उगड़े कन्हैया रोए बेचारा। एक बार कन्हैया मधुमंगल ने बोला, कन्हैया भागता हुआ आया, कहीं बोला इसको छोड़ो, क्यों इसको मार पकड़ा है? बोले तुम भी इसके साथ मक्खन चुराने आए थे, इसको पकड़ा है हमने, अब तुम आ गए ना, चुराया क्यों मक्खन? कन्हैया बोला तेरे मक्खन की बात पहले नहीं सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ये ब्राह्मण है, कोई गोप थोड़ी है, इस ब्राह्मण को तुमने चोटी के अंदर बांधा है, तुम तो बहुत बड़ी अत्याचारी हो, तेरे को पति मिलेगा नहीं मिलेगा, तो काना मिलेगा, लूला मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, अब तो गोपी बड़ी परेशान हो गई, हे कन्हैया फिर क्या करना चाहिए, बोलो लड्डू बनाओ महाराज को दो, महाराज से खुश हो जाएगा, आशीर्वाद देगा। अब तो चोटी भी खुल गई, लड्डू इतने सारे मधुमंगल के आगे आशीर्वाद देता है, तेरे को सुंदर पति मिलेगा, बस और दो लड्डू लाओ। अब ये माखन चोरी की लीला बढ़ते हुए एक दिन कन्हैया को पकड़ ही लिया गोपी ने, पकड़ के घर से निकली कन्हैया के हाथ से, बोला आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरे को ले जाके मैं जशोदा के सामने दिखाऊंगी कि तुम माखन खा रहे थे। जा ही रही थी रास्ते में तो सामने बड़ा बुजुर्ग सुसर आया, सुसर को देखा तो बड़ा लंबा घूंघट लगाया, गोपी ने घूंघट लगाया, कन्हैया ने उसके बेटे का हाथ पकड़ के उसे हाथ में दिया और कन्हैया भाग के चला गया। अब गोपी ऐसे पकड़ी हुई घूंघट पकड़ा हुआ, हे यशोदा देखो मैया, ये तेरा लाला अभी माखन पकड़ा हाथ से, रंगे हाथों पकड़ के आई है। यशोदा हंसती बोलते, देखो तो सही किसको पकड़ के आई है, कन्हैया कहाँ है तेरा छोरा है, हे नहीं मेरा कहाँ से आया, मैं अभी देखा तेरे लड़के को पकड़ा। अंदर से कन्हैया खड़ा हुआ ऐसे कर रहा है अंदर के अंदर आके गोपी को, तो गोपी देखी थी मेरा अपना लड़का मैं पकड़ के आई। गोपी बाहर वापस शर्म के मारे लोटी कन्हैया घूम के आया, बोला आज तुमने मुझे पकड़ा ना, तेरे बेटे का हाथ हाथ में दिया ना, दोबारा कभी पकड़ा तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। तब से गोपियों ने कहा अब आए खाए माखन हम इसको पकड़ेंगे नहीं, तब से गोपियों ने पकड़ना ही छोड़ दिया। तो लूट लूट दरी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, माखन खाने का उसको अधिकार है जो गाय चराता है, अमूल का मक्खन लेके घर में खाने से कोई फायदा नहीं है, गाय चराओ तो मक्खन खाने का अधिकार है। जो कि मक्खन खाने के साथ लिखा है ग्वाल बाल संग धेनु चराया, अरे भाई गाय चराते थे तो उसको मक्खन खाने का अधिकार है कि नहीं है, तो मुफ्त का मक्खन नहीं खाता था, मेहनत करके मक्खन खाता था, गैया सारा दिन चरा के आता था तब उसको मक्खन खिला, और सब चाहती थी कि हमारे हाथ का मक्खन कन्हैया खाए। बाहर से तो ऐसी करती थी नमूना, अंदर से सबका इच्छा था कि ये हमारा बालक हमारे घर में आए, हमारी गोद में बैठ के खाए तो हमको बहुत अच्छा लगता, हर माँ की इच्छा थी। इसलिए ब्रह्मा विमोहन लिया लीला में सब ग्वाल बाल जितने कृष्ण स्वयं बन गए, सब माओ को वो सुख दिया जो यशोदा को दिया था, हर गाय को वो सुख दिया जो हर गाय चाहती थी कि मेरा माखन तो खाता है घर में लेकिन मेरा दूध पिए कन्हैया स्वयं साक्षात। तो भगवान बछड़े भी बने सिर्फ गैया को सुख देने के। लूट लूट गरी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बार में। ये भगवान की लीला है, ये लीला लीला का मतलब ये होता है कि भगवान हमको सिखा रहे हैं कि अगर सुखी रहना है तो गैया रखो और मक्खन खाओ, ये दोनों चीजें नहीं होगी तो तुम्हारे लक्षण कभी सुधरने वाले नहीं है। नो मक्खन नो लक्षण, लखन लखन कहते लक्षण कहते हैं, मक्खन नहीं तो लक्षण नहीं। अब तो मक्खन ताजा आज का निकाला हुआ मक्खन, ये पुराने जमाने की जो कुछ माताएं बैठी हैं इनको याद अपने आप आता होगा कि घर में चार गाय हुआ करती थी और रात को मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म किया करते थे और दही जमा के रखते थे और सुबह मिट्टी के बर्तन के अंदर मंथन होता था, चार बजे माता उठ के मंथन करती थी और ताजा ताजा मक्खन का लोंदा इतना तैयार होता था। फिर माँ पांच बजे आटा पीसती थी ताजा अपना बाजरी का के गेहूं का और चक्की में, और बहुत सुंदर माता जब मक्खन बलोती है ना तो ऊपर का हिस्सा उसका परिश्रम करने के कारण वक्ष स्थल बहुत सुंदर होता है और मुखमंडल एकदम लाल हो जाता है अपने आप। यशोदा का बहुत सुंदर वर्णन है, जब वो दही का मंथन कर रही है गोपाल के लिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सुंदर लाल सा चेहरा उसका दिख रहा है, काले काले बाल है, और यशोदा 80 साल से बड़ी है जब कन्हैया का जन्म हुआ है, तो काले से बाल है, काले बादलों से जैसे बरसात बह रही है ऐसे पसीना बह रहा है, इससे बड़ा और कोई व्यायाम है ही नहीं, कोई योग आसन है ही नहीं। सुबह उठ के जो दही मंथन करे, एक किलो लेके क्या दही मंथन करोगे, 10-20 किलो होगा मंथन करोगे तो परिश्रम पड़ेगा तो स्वस्थ अच्छा रहेगा। और फिर ये जो अभी कभी हम नेचर क्योर में जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सालय में ना, तो लेडीज की तरफ पूछते हैं आपको एक्सरसाइज क्या करते हैं, बोला एक वहां चक्की रखी है हमको बोलते हैं आधा घंटा बैठ के चक्की पीसो, हमने बोला माँ ये घर में पीसी होती तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी, यहाँ 10,000 रूपये दे के चक्की पीस रहे हो, और घर में पीसी होती 10,000 बचता और स्वस्थ भी बहुत सुंदर होता, इतनी अच्छी एक्सरसाइज और कैसे हो नहीं सकती। अब वो ताजा आटा तैयार हो गया, मशीन का आटा नहीं, 25-50 दिन पुराना आटा नहीं, मैदा निकला हुआ आटा नहीं, सूजी निकली हुई आटा नहीं, भूसा नहीं, आटा, और वो भी पौष्टिक आटा। आस्ते आस्ते पत्थर जलता है ना, तो आटे के अंदर कुछ जलता नहीं है, मोटर वाला जल पखार सब आटा जला देता है, तो भूसा ही खाना है। इसलिए आदमी बेल जैसा हो गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं रह गया, भूसा खा खा कर। और फिर मां बहुत सुंदर सुबह सुबह रोटी बनाया है, उसी आटे का जो अभी पीसा है, उसके ऊपर वो मक्खन रखा है और दही दिया है, और बच्चे को उठा के कहा है बेटा तुम खाओ। और जब बेटा ये खाता था तो मां को चरण छू के और पढ़ने जाता था, और फिर सारे संस्कार उसमें अपने आप आ जाते थे। आज क्या खिलाते हैं आप बच्चों को, फिर हम आपसे पूछते हैं कि उनके संस्कार क्यों ऐसे हैं, क्या खिलाते हैं सुबह बच्चे को उठा के? एक चाय, और चाय के अंदर बिस्कुट और ब्रेड, कहां मक्खन चला गया, कहां ताजा रोटी चली गई, ब्रेड पता नहीं कब की बनी हुई थी, हा? तो संस्कार गए कि नहीं गए? अच्छी सी एक्सरसाइज हुआ करती थी, बेस्ट एक्सरसाइज आज भी यही है, सुंदर सुंदर बनना है, कोई खर्च नहीं कॉस्मेटिक का, सिर्फ सुबह 5 किलो का दही मंथन करो, घी भी अपना, दही भी अपना, छाछ भी अपना, कॉस्मेटिक का सारा खर्च बचेगा, स्वस्थ भी असना, दवाई का खर्च भी बचेगा, सुंदर भी लगेगी, नहीं लगेगा तो हमारी गारंटी, लेकिन करेगा कोई नहीं, नहीं करेगा कोई, लेकिन करना पड़ेगा, आज नहीं तो आने वाली पीढ़ी को। कब तक ये मशीनें चलेंगी? नहीं चलेंगी ये। हम तो इस वक्त एक आइटम बम के ऊपर बैठ के जी रहे हैं, तेल के ऊपर बैठे हुए हैं। 400 से ज्यादा पदार्थ हमारे घरों में यूज होते हैं तेल के आधार के ऊपर। सब्जी भी कहीं के बनी हुई बाहर की गाड़ी मोटर लाती है तब खाते हैं। 10 रुपए की चीजें 80 रुपए में होती है, यहां तक पहुंचते। ये तेल अगर बंद हो जाए कितना धरती से निकालोगे? 200 साल में हमने 50 साल में इतना निकाला है जो 2000 साल में पूरा नहीं हो सकता। और कल अगर कहें कि तेल बंद हो गया, नहीं मिलेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रकृति वापस घूम के वहीं आएगी जहां से शुरू किया था, सदा ऐसे नहीं रहेगा। ये 50 सालों में हम बहुत आलसी हो गए हैं, और बहुत हमारा दिमाग जिसको कहते हैं मेमोरी समाप्त हो गई है। आप लोगों को आज से 15 साल पहले कितने फोन नंबर याद हुआ करते थे? 100 लोगों के कम से कम नंबर हमको याद होते थे। अभी आपको अपना नंबर याद है? घरवाली का भी पूछते हैं, देखो मोबाइल खोलता हूं है कि नहीं है, देखो कहां है। इसका मतलब याददाश्त हमें समाप्त हो गई हमारी, यूज नहीं करेंगे तो डिसयूज हो जाएगी ना अपने आप, यूज करना खत्म हो गए। कितने पहाड़े पहले बच्चों को आया करते थे, अब गुणा करना है तो कंप्यूटर को कैलकुलेटर लाओ, हिसाब करने खत्म हो गया, कैलकुलेटर हिसाब करता है। अरे बैंक में सारे पैसे रखे हुए हैं और कंप्यूटर उसका सर्वर डाउन हो गया तो आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वैसे बैठा है। देखा है बैंक के अंदर हाल क्या है? अरे मेरे को पैसे मेरे हैं, चाहिए मेरे को किसी को देने हैं, बोला सर्वर डाउन है। तेरा सर्वर डाउन है, मेरा तो काम गड़बड़ा हो गया। तो कितना देखो तो डिपेंड कितना हम हो गए हैं, किसके आधार पे जी रहे हैं? भगवान का आधार छोड़ के मशीनों के आधार पे जी रहे हैं, और ये मशीन बंद हो गई तो होगा क्या हमारा? तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि गाय दो चार, भगवान आपको, भगवान ने कुछ सुख दिया है, धन दिया है, तो 2-4 एकड़ जमीन कहीं रख के 4 गाय उधर रख, तो घर वालों से नहीं होते छोड़ो, उधर से घर में अपने कुछ अन्न अपना पैदा करो, कुछ दही अपना दूध पैदा करो, कुछ गाय की भी रक्षा करो। गाय की रक्षा होनी चाहिए, नारा तो सब लगता है, अरे गाय की रक्षा कैसे होगी? तुम तो पालोगे नहीं तो कोई तो कुछ मारेगा ना, तुम तो प्रिंस है तो पलती नहीं है। जब हम पालते नहीं है तो रक्षा करने का नारा लगाना तो खोखला नारा है ना। हर गृहस्थी घर में 4 गाय कम से कम होनी चाहिए, और नहीं रख सकते हो तो जहां गौशाला में हो उनका पालन पोषण करो, वहां से दूध और दही मंगाओ और खाओ सुख से। गाय को रक्षा का नारा तो है, लेकिन गाय को पालने के लिए कोई तैयार नहीं है। गाय की, स्त्री नारी का, बच्चों का, वृद्धों का और ब्राह्मण का, जहां सुरक्षा और सम्मान नहीं है वो सारी संस्कृति नाश की तरफ जा रही है, वो समाज बहुत नीचे के स्तर के ऊपर गिरने जा रहा है। ये पांच चीजों को भागवत में लिखा है। ये पांच बच्चे की इसलिए सुरक्षा होनी चाहिए कि ये भविष्य में, ये भविष्य का निर्माण करने वाला है। उसको अगर ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिली तो आपका भविष्य तारक हो गया। स्त्री बच्चों को जन्म देने वाली है, उसकी सुरक्षा नहीं है, उसका देखभाल नहीं है, उसका सम्मान नहीं है तो घर कभी घर में सुखी रह नहीं सकते। नारी नहीं सुखी तो घर में कोई नहीं सुखी रह सकता है। और वृद्ध बेचारा अपना जीवन समाप्त करके अब वापस भगवत धाम जाए, इसलिए उसको अच्छी तरह से सम्मान के साथ घर में बिठाकर देवता की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ के आना चाहिए, बूढ़ा घर में बाप को नहीं छोड़ के आना चाहिए। ये बात हम कई बार लोगों को बताए, फिर आपको बताते हैं। कभी कभी स्त्रियां घर में बूढ़े आदमी से बहुत तंग होती हैं, खांसता भी है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर बोलता है, नमकीन ज्यादा दे दिया आज, घी कम कर दिया है, बहुत दुख देती है। इसको छोड़ के आओ हरिद्वार में किसी आश्रम के अंदर। ऐसे परेशानी जब होती तो बेचारा मर्द क्या करे, सारा दिन कमाने के लिए जाए, कितने लोगों से झूठ सच परेशानी, और घर में आए तो फिर झगड़ा घरवाली का, तो क्या करे, मजबूर हो गया। पिता को बोला तुम्हारे को चलो हरिद्वार गंगा स्नान करके आऊंगा। पिता बड़ा खुश हो गया, गंगा स्नान बच्चा मेरा कराने जा रहा है, चलो। जब गए मुजफ्फरनगर से आगे तो बिठाया एक जगह पेड़ के नीचे, बोला बापू आप यहां बैठो, मैं आपके लिए भोजन का बंदोबस्त करके आया। बेटा मुड़ा, बाप हंसा, जोर से हंसा और हंसने के बाद रोने लगा। बेटा मुड़ के वापस कहता है पिताजी आप ये हंस क्यों रहे, आप रो क्यों रहे। बाप बोलता है बेटा हंस इसलिए रहा हूं कि तुम मेरे लिए भोजन लेने नहीं जा रहे हो, मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो। बेटे को शर्म तो आई लेकिन पूछा फिर बाबा आप रो क्यों रहे थे। बोला बेटा रो इसलिए रहा था कि मेरे बाप को भी मैं वहां छोड़ के गया था, मेरे बाप को मैं यहां छोड़ के गया था। आज हम अपने बाप को घर से बाहर निकालेंगे तो हमारा लड़का 3 साल पहले निकाल देगा। आप ना ये कोई सुख मत समझो कि आप उसको निकालोगे तो सुखी हो जाओगे, इसके अंदर से आपको निकलना पड़ेगा। आज सांस आपको लगती है कि सांस की डेफिनेशन क्या है, बोला देखने से सांस बंद हो जाता है लेकिन कल तुमको सांस बंदना पड़ेगा, तेरी बहू भी यही कहेगी। तो ये ठीक तरह समझना चाहिए, जो आज जो आज बहू है उसको कल सांस बंदना पड़ेगा, उसी को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मर्यादा शास्त्र ने जो बनाई है उसको ठीक तरह निभाना चाहिए। तो ये कुल परंपरा है हमारे, इसलिए स्त्री का, बालक का, वृद्ध का, गाय का और ब्राह्मण का। ब्राह्मण का इसलिए सम्मान होना चाहिए, वो शिक्षा देने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, संस्कार देने वाला, नहीं तो संस्कार कौन देगा। ये पांच की सुरक्षा है तो समाज समृद्धि की तरफ है, सुख की तरफ है। इन पांच का अगर नहीं निरादर किया गया तो समाज समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं भगवान ने इसके बाद द्रुपद सुता की लाज बचाई। स्त्री की लाज बचाना भगवान ने यहां सिखाया कि नारी की सुरक्षा का दायित्व भगवान ने स्वयं अपने ऊपर उठाया है। पति नहीं लाज बचा सका तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान उसकी सुरक्षा के लिए भागते हुए आए। ये नारी की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये द्रुपद सुता की लाज बचाई। भगवान की भक्त है द्रौपदी, कृष्णा उसका दूसरा नाम है, और साधारण स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुई है द्रौपदी, यज्ञ से पैदा हुई है। द्रौपद महाराज ने यज्ञ किया था और यज्ञ कुंड से ये यज्ञ से उत्पन्न हुई है द्रौपदी, साधारण नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण इसको अपनी सखी मानते हैं और ये भगवान से बहुत बड़ी प्रेम करती है द्रौपदी। वो पांडवों से विवाह भी भगवान के परामर्श के ऊपर ही इसने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए द्वारका से दौड़ के आए थे। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, साड़ी को खींचते खींचते थक गया, 10 गज की साड़ी नहीं खूटी थी, भगवान साड़ी बन के लिपट गए थे। तो ये भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं, नारी का अपमान भगवान नहीं देख सकते हैं, स्त्री का अपमान करने वाला नरक में जाने वाला है। और इसका उदाहरण आगे भी लिखा है कि द्रौपदी के केसों के अंदर हाथ डालने वाला, उसके बिखरे केसों को देखने वाले सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए, वो समय से पहले मरे क्योंकि स्त्री का अपमान किया था। नारी का अपमान करने वाला नाश हो जाता है और भगवान कहता है उसका नाश मैं करता हूं। तो नारी का सम्मान करना, ये भजन के अंदर द्रौपदी की लाज बचाना नारी के सम्मान का बहुत बड़ा संदेश है। ये हमारे को ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि सुरक्षा नारी की करना हमारा धर्म है। और फिर पशु भी अगर हमारा पालना है घर में तो उसकी सुरक्षा भी करनी। जब तक दूध देती है गाय तब घर में रखते हैं, नहीं तो गाय पॉलीथिन खा रही है गलियों के अंदर, जाके देख लो शहर के अंदर गाय दूध निकालते हैं तब गुदू निकालते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, जाके डंडा खाती है किसी का। जैसे क्या कल गाय माता जी घर में कोई बूढ़ा हो गया घर में तो निकाल देंगे बाहर, घर से बाहर क्या? पुराने जमाने में अगर अपनी संस्कृति को देखें तो गो सदन बनाए होते थे, गौचर भूमि हुआ करती थी। शहर के बाहर 2-3 किलोमीटर भूमि का नाम गौचर होता था, गाय के चरने लिए, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता था, गाय मुफ्त में चरती थी। अभी भी देखो कहीं लिखा होगा गौचर भूमि, गौ सदन, कि बूढ़ी गायों की देखभाल समाज किया करता था, ये हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो जो पगड़ी बांधते थे ना उनके दिमाग में अकल रहती थी, जब हमने पगड़ी छोड़ी तब से हमारी अकल भी उड़ गई है सारी, वो ढक के रखते थे कुछ अकल को हमारी, पगड़ी को छोड़ दिया, धोती को छोड़ दिया, अब बेलगाम हो गए, जो चाहे वो कर सकते हैं, संस्कृति का सत्यानाश करते जा रहे हैं। तो गौ सदन वो सारी गोचर भूमि के ऊपर कब्जा करके रखा है लोगों ने, जाके देखो बाहर जो गांव के आके रहते हैं वो सब गोचर भूमि के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी हमने तो यहां तो क्यों कराची के अंदर 100 एकड़ गौचर भूमि मैं अपने हाथों से देखी है, पड़ी है, अभी तक पर कब्जा किया है कुछ लोगों ने, लेकिन उस वक्त के लोगों की रखाई है तो अभी तक कागज में उसको मिटाना मुश्किल हो गया। 60 गाय, मैं आज से 30 साल पहले गया था, गवर्नमेंट 60 गाय पाल रही थी वहां, क्योंकि गौचर भूमि है तो दिखाना है कागज के ऊपर के गैया की हम सेवा कर रहे हैं। और गैया को अम्मा बोलते हैं, अभी भी अम्मा अम्मा बोलते हैं, माँ माँ ऐसे बुलाते हैं, और मुसलमान से मैंने देखा था, क्योंकि करना पड़ता है। तो गाय की गौचर भूमि हुआ करती थी, वो खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई? गाय की रक्षा करनी है। पशु या गज, हाथी की बात कर रहे हैं, हाथी की भगवान ने रक्षा की थी, गज को ग्रह से फंद छुड़ाया, भागवत में पूरा गजेंद्र मोक्ष का 3 अध्याय है पूरे, कि आपत्ति हो विपत्ति हो संकट हो तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और यहां हाथी ने प्रार्थना की है, क्योंकि हाथी ये जन्म उसको शराब के कारण मिला था। पहले तो वो बहुत बड़ा राजा था दक्षिण भारत का, इंद्रद्युम्न नाम था, और बहुत घर राजपाट छोड़ के तपस्या करने गया था, लेकिन एक ऋषि के अपमान के कारण उठा नहीं, तो उसने कहा हाथी की तरह पड़े हुए हो, तुम्हारी भक्ति किस काम की, उसको हाथी बनना पड़ा। तो भोग मिला लेकिन भगवान नहीं मिला, बहुत बड़ा हाथी बना, लेकिन आज हाथी को जल विहार करते हुए मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ का बल बढ़ता गया, हाथी का बल कम होता गया, पानी के अंदर मगरमच्छ रह रहा है। ये दुनिया के अंदर काल रूपी मगरमच्छ ने हम सबको पकड़ के रखा हुआ है, सबका पांव काल रूपी मगरमच्छ के मुंह में पड़ा है, हमारा भी। कोई किसी का 10 साल गया है मुंह में, 10 किसी का 20, किसी का 25, किसी का 50, सभी मगरमच्छ के मुंह में पड़े हैं। ये हमारे रहने की जगह नहीं है, जैसे हाथी थल के ऊपर रहता है और मगर जल के अंदर रहता है, ये धरती हमारे रहने का स्थान नहीं है। यहां हम पानी, जैसे मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती है, ऐसे हम इस दुनिया के अंदर नहीं रह सकते हैं। मगरमच्छ ने हमको भी पकड़ के रखा है, हमको भी गज की तरह प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, कि कब ये मगरमच्छ से हमको छुड़ा, ये काल रूपी मगर सबको ग्रस्त करता जा रहा है, सबको पकड़ा हुआ है। और उसके आगे ये बात भी भगवान ने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि इस दुनिया में आए हो तो गौ की पालन भी करो, घर में दूध दही मक्खन भी रखो, नारी का सम्मान भी करो, पशुओं की रक्षा भी करो, गाय की रक्षा करो, दूसरे पशुओं की भी रक्षा करो, फिर जाने से पहले कोई ऐसा काम भी करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करें और सबका उद्धार होता रहे। आज गए थे सत्संग भवन में, आपके यहां बना हुआ राजमहल था, लेकिन आज बड़े अच्छे काम आ रहा है। तो इतनी बड़ी सुंदर चीजें आपके बड़े बुजुर्गों ने लेके रखी है, तो किसी काम अच्छे आ रही है ना, तो अच्छा काम करके जाओगे तो आने वाले 200 साल तक और सत्संग इसमें होता रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो किसी न किसी का भला ही होगा ना। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र को युद्ध रचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, गीता देके गए। आज वो भगवान जिसका यहां एड्रेस पूरा दिया हुआ है, कृष्ण जिनका नाम है, यशोदा जिनकी मैया है, राधा जिनकी जाया है, और जो दूध मक्खन खाने वाला ग्वाल वाल इसके साथ गाय चराने वाला द्रौपदी और गज का रक्षा करने वाला आज कहाँ मिलेगा? बोला गीता के पन्नों के अंदर अपनी वाणी में आज भी आपको मिलने के लिए तैयार है। वो गीता का ऐसा सुंदर शास्त्र आपके लिए छोड़ गया है कि आज कृष्ण से बात कर सकते हो। गीता में भगवान बोलता है, श्री भगवान वाच, ये भगवान के वचन है। और वो गीता भगवान ऐसी छोड़ के गया है कि आज भी कृष्ण को हम सब याद करते हैं गीता के बाद। हम नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष के किसी भी शास्त्र को दुनिया जानती है तो गीता को जानती है। गीता ऐसा शास्त्र है कि दुनिया पूरी जानती है। और अरे इस्कान संस्था ने गीता को 80 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया है। अरबी भाषा में भी है, तो अफ्रीकन भाषाओं में भी है, चाइनीज भाषा में भी गीता है। इसका एक बहुत बड़ा भविष्य में जो परिणाम निकलेगा वो ये होगा कि 5000 साल के बाद हम नहीं रहेंगे। इतिहासकार जब नया इतिहास लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, तो उस वक्त लिखेंगे कि चाइनीज में भगवत गीता, अरबी में भगवत गीता, स्पेनिश में भगवत गीता, बहुत सुंदर मंदिर राधा कृष्ण का हमको मिला है चाइना के अंदर, रशिया के अंदर। तब इतिहासकार लिखेगा भारत की सनातन संस्कृति पूरी पृथ्वी के ऊपर हर देश और हर गांव तक फैली हुई थी। ये एक व्यक्ति ने सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी 70 साल का, इस भारतवर्ष का एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में यहां से पानी के माल वाले जहाज में, भार उठाने वाले जहाज में अमेरिका में गया था और उसने पूरे विश्व के अंदर गीता की अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से सारी भाषाओं में करके और आज 500 से अधिक सुंदर मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम के स्थापित किए। भविष्य में इतिहासकार लिखेंगे कि भारत संस्कृति, सनातन संस्कृति पूरे विश्व के अंदर फैली हुई थी, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल भाषा में कहा है, भारत में तुम्हारा जन्म मिला है, बड़े भाग्यशाली हो। भारत में जन्म मिलना साधारण बात नहीं है, ये तो ऋषियों की भूमि है। ये ऋषि की भूमि में रहने वाला आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आप ऐसे करो, अपने जन्म को सार्थक कर को, मानव जन्म का जो शुभ फल है उसको प्राप्त कर लो और फिर कर परोपकार, फिर दूसरों का भला करो, फिर दूसरों का भला करो। आज अगर दुनिया के अंदर अशांति है, दुनिया के अंदर आतंकवाद है, दुनिया के अंदर कोई संकट है, उसके कारण हम हैं भारतवासी। क्यों हम हैं? क्योंकि हमने ये सनातन धर्म की शिक्षा दुनिया को नहीं दी है, इसलिए वो दुनिया आतंकवादी हो गई। इसका कारण हम हैं कि ये सत शास्त्र जो हमारा आधार है इनको हमने भुला दिया है। भारत गरीब देश नहीं है, हम दुनिया से जाके रिजर्व बैंक से भीखा मांगते हैं, हम गरीब नहीं है। अरे हमारा धन तो ये है, एक व्यक्ति यहां से गया था, कुछ भी नहीं ले गया था, 40 रुपये भारत के थे और 10 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर अरबों रुपये की प्रॉपर्टी भगवान श्री कृष्ण के नाम में, केवल 700 श्लोक की भगवत गीता के आधार के ऊपर दुनिया सारी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली एक व्यक्ति ने, तो हम गरीब नहीं है। 4 श्लोक अगर आपको गीता के आते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप बैठ के इसे भगवान के कीर्तन करो, हरे कृष्ण और गीता के 2 श्लोक पढ़ो, 1000 लोग आपके चरणों में बैठेंगे। प्रभुपाद जी एक जगह लिख के बोलते हैं, वृंदावन में बैठे थे, इंग्लैंड से एक आदमी आया, भक्त आया और रसगुल्ला लाके बोला, आज सुबह सवेले 4 बजे भगवान को मंगला भोग लगा है और शाम तक आपके पास पहुंचा है, आप इस प्रसाद भगवान का लीजिए। प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेज जब यहां रहता था, राज करता था, तो कपड़े अपने ब्रिटिश में धुलाता था, लेकिन रसगुल्ला किसी ने अंग्रेज ब्रिटिश में बना के और वृंदावन में बैठ के खाया, ऐसे कोई नहीं आजकल तक कर पाया। इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है कि पाश्चात्य देश के लोग तो आज बड़े गौरव के साथ धोती पहनकर, चोटी रखकर, तिलक लगाकर और गली गली में हरि कीर्तन कर रहे हैं। जो हम कई किया करते थे, सुबह प्रभात फेरी हमारे बड़े बुजुर्ग प्रभात फेरी करते थे, वो हमने छोड़ दिए। आज वो पाश्चात्य देश के लोग गली गली के अंदर गोविंद के गुण गा रहे हैं और गौरव के साथ धोती और चोटी रखी हुई है, उनको तिलक लगा हुआ है। ये हमको ये कैस क्यों किया ऐसे? इसको करने की जरूरत क्या थी? इसको करने की जरूरत ये थी कि 200 साल की अंग्रेज की गुलामी ने हमको हर एक चीज मेड इन अमेरिकन अच्छी लगी, मेड इन इंग्लैंड अच्छी, मेड इन जर्मनी अच्छी लगी, हमें भारत की अपनी स्वदेशी चीजों के लिए सम्मान नहीं रह गया। तो इन बहुत बड़े भगवान के भेजे हुए भगवान के दूतों ने आध्यात्मिक जगत के एम्बेसडर जो थे उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष का उद्धार तभी हो सकता है जब ये सनातन धर्म की शिक्षा भी पाश्चात्य देश से लौट के आएगी तब ये उसको महत्व देंगे। इसलिए प्रभुपाद यहां से न्यूयॉर्क शहर के अंदर जाके पहले प्रचार शुरू किया 65 में जंग से पहले युद्ध से पहले 65 के और वहां से जब अंग्रेज भक्त बन के भारत में आए और दिल्ली के अंदर और सूरत के अंदर और बॉम्बे में कीर्तन किया तो भारतवासियों ने कहा ये तो मेरा दादा करता था ये तो हमारे घर में मंदिर हुआ करते थे ये तो हरे कृष्ण मंत्र हमारे गांव में सुबह हम करते थे अरे ये इनको कैसे मिल गया अरे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है इन्होंने अपना घर छोड़ दिया दुकान छोड़ दिया धंधा छोड़ दिया ये तो अमेरिका वाला है ये बैठ के यहां वृंदावन के अंदर कीर्तन कर रहा है और हम कहते हैं अमेरिका की वीजा हमको लगनी चाहिए हमको हो क्या गया है ये तो कोई गलत बात हो गई उन्होंने तो असली चीज को समझ के पहचान लिया और हम अपनी असली चीज को छोड़ते हुए जा रहे हैं गौरव के साथ अपने वेशभूषा अपने शास्त्र और अपनी आध्यात्मिकता को संभाल के रखो और भगवद गीता ऐसा शास्त्र है उस एक को समझ लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा और उसके अंदर भगवान ने गारंटी दी हुई है कि जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा क्योंकि उसका रक्षा मैं करता हूं। कौन से प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति अर्जुन जाके दुनिया के अंदर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है तो कृष्ण भक्त बन के अपने जीवन को आपका अच्छा नाम रखा है कृष्ण सत्संग भवन आपके बड़े बुजुर्ग निश्चित रूप के इस क्षेत्र के गोपीनाथ का मंदिर है गोपीनाथ के भक्त हैं तो इस भक्ति को इस गौरव को आप सम्मान को आप संभालो आने वाली पीढ़ी के लिए आपके ऊपर ये दायित्व है ये रिस्पांसिबिलिटी है इसको इग्नोर मत करो। धन नहीं छोड़ गए बच्चों के लिए तो अपने भाग के साथ लाए हैं कमाएंगे लेकिन ये शास्त्र आपके घर में होगा तो उन बच्चों का मार्गदर्शन होगा धन होगा नहीं होगा कोई बात नहीं लेकिन ये अगर घर में पड़ा हुआ होगा तो आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। तो इन चीजों को जरा ध्यान दीजिए और एक हमारी हाथ जोड़ के आपको विनती है कि कलयुग के प्रभाव से अगर बचना चाहते हो और हमारे ऊपर एक कृपा करना चाहते हो तो भगवान का नाम अपने घर में जपना शुरू कर दो और देखो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आपका लाभ हो तो आप सुखी रहना नुकसान हो तो बिल हमको भेज देना लेकिन आप भगवान का नाम लेने के लिए अपने आप भले के लिए ये काम करने के लिए संकल्प कर लो ये आपका भला है हमको कुछ लेना नहीं है इसमें कुछ देना नहीं है लेकिन आपके शास्त्र के अंदर भगवान आपका भी उतना ही सगा संबंधी और पिता है माता है जितना हमारा है ये उसका संदेश है हम तो पोस्टमैन की तरह उसका संदेश आपके नाम है आपको दे रहे हैं और इससे हमको जो सुख मिला है उसके अनुभव के आधार पे हम आपको उस सुख का समाचार दे रहे हैं। ये काम करने से हमको सुख मिला है परिवार पाल रहे हैं परिवार है ये बच्चा बैठा है मृदंग बजा रहा है मेरा लड़का है बड़ा मेरे साथ तो परिवार है घर है सबका वो देखभाल भी हो रही है उनका भी भगवान सब चला रहा है काम कोई चिंता की बात नहीं है और भगवान की भक्ति भी हो रही है तो कोई भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है दुकान मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है केवल जीवन में भगवान के नाम को जोड़ने की जरूरत है कुछ मत छोड़ो केवल जीवन में गोविंद के नाम को जोड़ दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बस ये सुंदर नाम भगवान का उच्चारण करो जीवन सफल करो क्योंकि ये विवाह के उपलक्ष में विवाह संस्कार के वर्ष गांठ के उपलक्ष में कार्यक्रम था तो कल हमने ललित जी और संजू के 15 साल के विवाह के दिवस को बड़े प्रेम के साथ आप सबके सामने उसका यहाँ मनाया था भगवान के कीर्तन।